نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير نہ کر بندیا میری میری. بڑا معروف جملہ ہے. اردو میں کہہ دیں تو یہ کہ یہ میری ہے یہ تمہاری ہے, یعنی چیزوں کو ہول کرنا پوزیس کرنا انسانوں کی عادت ہے. ڈونٹ بی گریڈی, یہ ہے آج کا ہمارا ایک شارٹ سا موضوع, کہ جس کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں بھاگتے رہتے ہیں اور ایک دن ہم مٹی میں چلے جاتے ہیں. بابا بلے شاہ ایک بڑے صوفی شاعر معروف تھے, میں نے زیادہ ان کو نہیں پڑھا لیکن پنجاب میں رہتے ہوئے ان کے کلچر اور ان کی چیزوں کو جانتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہ کر بندیا میری میری, نہ تیری نہ میری, چار دنوں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی ڈھیری. جن کو پنجابی آتی ان کو سمجھ آ گئی ہے, لیکن چونکہ لیکچر آن ایئر جاتا ہے مختلف طرف سے لوگ سنتے ہیں تو نان پنجابی لوگوں کے لیے اس کا ترجمہ کیا ہے, کیا انسان یہ نہ کہا کرو یہ میری میری. سوچے ذرا دن میں کتنی دفعہ کہتے ہیں میرا گھر, میرا جوتا, میرا فون, میری گاڑی, میرے کپڑے. آج آپ کو پہلا سبق یہ دوں گی, یہ بڑا چھپا ہوا سبق ہے, آرام سے نہیں ملتا. غیر مخصوص طریقے سے نوٹ کریں, کسی کو کہہ دیں گھر میں, بچوں کو, وہ تو خوب آپ کی غلطیاں نکالیں گے. میاں صاحب کو کہہ دیں کہ نوٹ کریں میں دن میں کتنی دفعہ لفظ میری بولتی ہوں, میری, میرا, میرے, میں, آئی ایم. یہ انسان کی خود پسندی کی علامت ہوتی ہے, یہ اندر کی بات ہے, ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم کتنا خود کو پسند کرتے ہیں یا ہم دنیا سے کتنا مرعوب ہے. لیکن دن میں اکثر ہم میری مرضی, میرا دل نہیں کر رہا, میری خواہش, میں کیوں کھاؤں, مجھے اچھا نہیں لگتا, یعنی انا ربکم الاعلیٰ. فرعون کا بولا ہوا ایک جملہ کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں, وہ تو شاید اس کے پاس کچھ تو تھا نا. امام ابن قیم یا تیمیہ کا قول ہے کہ فرعون کے پاس پھر بھی کچھ تو تھا نا, غلام تھے, ملازم تھے, زمینیں تھیں, پھر وہ کرتا تھا یہ کہ میں, میری چیز, میں تمہارا بڑا. لیکن انسان کا نفس, کچھ بھی نہیں ہو پاس تو پھر بھی میں کرتا ہے, بکری کو اچھا لگتا ہے. تو میری میری یعنی چیزوں کو ہولڈ کرنا, نہ تیری نہ میری, یعنی یہ دنیا نہ تمہاری ہے نہ میری ہے. چار دنوں دا میلہ, یہ دنیا چار دن کا میلہ ہے, ایک فیسٹیول ہے, ایک سیلیبریشن ہے. دنیا پھر مٹی دی ڈھیری, اس کے بعد دنیا مٹی کی ڈھیری بن جائے گی. اگر آپ سوچیں تو یہ کیا پیغام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو سورت یونس کی آیت 24 میں بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے. کیا ہے, آئیے ذرا دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی میں. انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء. اب ساتھ ساتھ لفظوں کے سوچے, بے شک دنیا کی یہ زندگی کون سی, جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہو, جس سے غافل ہو کے تم ہمیں بھول جاتے ہو. یہ دنیا کا نشہ جو تمہیں نمازیں وقت پہ پڑھنے نہیں دیتا, یہ دنیا ہے جس کے پیچھے ہر وقت کھپ رہے ہو کھپ رہے ہو. اگر آپ صرف اتنا جملہ دیکھیں نا کہ انما مثل الحیات الدنیا, تو آپ کی میری دنیا کی حقیقت کھل کے آتی ہے. یہ ہے تمہاری دنیا. آج کسی کو راہ جاتا پوچھئے, سناؤ بھائی کیسی گزر رہی ہے, آپ ہیں, ہم خواتین, ہم کسی اور سے, آپ سناؤ کیسی گزر رہی ہے, اماں جی زندگی کیسی گزر رہی ہے, تاڈی بچیاں بچے کیسا حال ہے, کی چل رہا ہے تاڈے نال, یعنی کسی بھی لینگویج کسی بھی ٹون میں پوچھیں, عام طور پہ آگے سے ہوکا نکلتا ہے, شکر ہے جڑے حال چ رب رکھے. यदि हमारे उस जुमले में भी शिकवा होता है, हम शुक्र भी शिकवे की तरह करते हैं। क्या हाल है? शुक्र है। अंदर से गीबत निकलती है कि नहीं, शुक्र कोई नहीं, ये सबर ही है बस। तो आमतौर पे देखिए तो दुनिया और दुनिया के गम और इसी तरह दुनिया की खुशियाँ बेमानी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी थे, आपके दामाद भी थे, वो कहा करते थे कि मैं इस दुनिया का गम क्यों खाऊं, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, क्यों? हलाल से मिली तो हिसाब देना होगा और हराम से मिली तो अजाब होगा, तो मैं इसकी फिक्र क्यों करूं? हमारे सलफ सालेहीन कूड़े के ढेर के पास से जब कभी गुजरते थे ना, तो कहते थे, दुनिया तेरी असल ये है। घर में खाने पीने की चीज़ें आती हैं ना, ग्रोसरी, राशन, करियाना, कितने चमकते हुए डब्बे, पैकिंग, सब्जी आती है कितनी खिली हुई फ्रेश। अब छीले कद्दू या आप आलू, थोड़ी देर उसके छिलके वहां छोड़ दे, क्या होगा? रंग बदलता है, बदल जाता है। केले लाकर 2-3 दिन टेबल पे छोड़ दें, शक्ल ही बिगड़ जाती है। दुनिया में इंसान किस तरीके से आता है और क्या कुछ करता है, लेकिन हम इसके बारे में क्यों नहीं सोचते कि ये दुनिया, इसकी असल कुछ भी नहीं है। इसकी खुशियाँ भी वक्ती, इसके गम भी वक्ती। अल्लाह ताला ने इधर एक बड़ी प्यारी मिसाल दी है, और जो मिसालें होती है ना, ये गौर व फिक्र के लिए होती हैं। तो इतनी बात हम समझ गए, इन्नमा मसलुल हयात दुनिया, इसके सिवा और कुछ नहीं, यानी यही है मिसाल दुनिया की, जिंदगी की। यहाँ मजे की बात देखिए, दुनिया नहीं है, हयात दुनिया लिखा। जिंदगी क्या है? कमाइन। तसव्वुर में लाएं बारिश को, जैसे पानी, माँ पानी को कहते हैं, अनज़लनाहू, हमने नाजिल किया है उसको। यहाँ आपकी एक इसलाह करूंगी अपने साथ, अक्सर हम क्या कहते, बारिश हो रही है, उस जुमले में क्या गलती कोई नहीं है ना, हम कोई गलत नहीं ऐसे कहते हैं, लेकिन ये आयत क्या बता रही है, अनज़लनाहू, हम नाजिल करते हैं उसको। फर्क क्या है? जब आप कहते हैं बारिश हो रही है तो जहन में पता क्या आता है, खुद ही हो रही है, लेकिन जब आप कहते हैं अल्लाह बारिश नाजिल कर रहा है तो पीछे खालिक का तसव्वुर है। ये आयत अनज़लनाहू की जगह नज़ला भी हो सकता था, उसने नाजिल किया, युनज़िलु कुछ भी हो सकता था, तो कभी भी कहे तो ये कहे बारिश बरसाई जा रही है, अल्लाह बारिश बरसा रहा है। कहाँ से? मिन समाई, आसमान से। जहन में लाइए जरा बारिश का तसव्वुर। अब जब बारिश बरसती है तो हमारे दो तरह के रवैये आते हैं, क्या? कुछ खुश होते हैं, गर्मी है तो सारे ही खुश होंगे। अभी 2 वीक पहले हम लोग हरम में थे तो सलातुल इस्तस्का पढ़ाई गई, बारिश हो, और जब बारिश हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, हाय कीचड़ ही कीचड़ है, हाय गलियों में पानी भर गया। ऐसे ही होता है ना, खासतौर पर गांव और देहात की गलियां कच्ची होती हैं, तो जब पानी मिलता है तो कीचड़, और वो कीचड़ से भरे जूते अंदर आते हैं तो सफाई खराब होती है। सोचे इसको, अल्लाह सुब्हान तआला ने दुनिया के माल को, दुनिया की चीजों को यहाँ बारिश से ताबीर की है। क्यों? नहर नहीं का, समंदर नहीं का, जग कूलर बोतलें पानी की नहीं का, क्यों लिखे? नंबर 1, बारिश इंसान के इख्तियार में नहीं है, बिल्कुल इसी के तकाबुल में लिख लें, मेहनत सब करते हैं, कोशिश भी सब करते हैं, लेकिन उसके नतीजे में किसको ज्यादा मिलना है, किसको कम मिलना है, ये आपके इख्तियार में नहीं। कभी कभी छोटी उम्र का यंग बच्चा ज्यादा पैसे कमा लेता है बूढ़े तजुर्बा कार बाप की निस्बत। अब देखिए, रोज सुबह उठ के मजदूर घर से निकलता है दिहाड़ी के लिए, कुछ काम मिल जाए, मिल भी गई सारा दिन मेहनत करके ईंटें उठाई, मट्टी ढोई, फिर कोई इमारत बन रही थी काम की, पसीना, रोटी साग खा पी के रात को आता है वो बंदा, टूट हुआ है, थका हुआ है, चूर चूर। जेब में कितने हैं मुझे नहीं पता, इस वक्त पाकिस्तान में एक मजदूर की दिहाड़ी कितनी है? मेरा लिए 1000-1200 ही होनी है, 1000 ही है ना, और मिस्त्री होगा तो 1500 होगी। सारा दिन लगाया और 1000 रुपया, और आज 1000 रुपये की क्या वैल्यू है? इसके बरक्स एक बंदा कोई एक ट्रांजैक्शन करता है, कोई कंप्यूटर पे काम है, कारोबार है, डील है, तो उसको एक ही डील में 5 लाख रुपया बचता है। किसके इख्तियार में? किसी के भी नहीं। दूसरी चीज देखिए कि अल्लाह ने यहाँ दुनिया की जिंदगी को बारिश के पानी से क्यों ताबीर किया? बारिश ना हो तो मुश्किल, और बारिश हो तो और मुश्किल। ऐसी है ना, जो भी मैंने कहा कि बारिश होती है तो बहुत कुछ है, मच्छर आ जाते हैं, कीड़े निकल आते हैं, और ज्यादा ही दिन बारिश चले तो निजाम ही रुक जाता है जो दुनिया का चलता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी दुनिया, पैसा नहीं होता मुश्किल है, मैं मानती हूँ मुश्किल है, फिक्रें बड़ी रहती है, हाय बिजली का बिल कहाँ से जाएगा, हाय भी तो बच्चों की फीस भी देनी है, हाय ये हाय वो हाय वो हाय हाय हो रहा होता है, ऐसी है ना। और अगर दुनिया ज्यादा हो जाए तो मेरी बात पे यकीन कीजिएगा, ज्यादा मसले, छोटा घर छोटे छोटे मसले, बड़ा घर बड़े मसले। ट्रेवलिंग के दौरान अलग मुख्तलिफ जगहों से गुजारता है, कभी बहुत ही पसमानदा इलाकों में, कभी बहुत दुनिया के इलाके, हाई वाई पोश इलाके। आमतौर पर अगर कोई आपसे पूछे आपका दिल क्या करता है, ऑफ कोर्स बहुत कुछ हो, कपड़े ढेर हो, जूते ढेर हो, घर बड़ा हो, हर चीज। लेकिन यकीन कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको इन चीजों की हकीकत समझ आए, तो जरा एक सफर कीजिए, अल्लाह आप सबको उम्रे पे लेके जाए, रमजान में लेके जाए, ख्वाहिश है ना, हज पे ले जाए, वहां जाकर भी, और दुनिया के किसी सफर में सबसे मुश्किल चीज आपको पता है क्या है? सामान। दिल तो हमारा चाहता है एयरलाइन 100 किलो की इजाजत दे दे हमें, कह दे जो लाना ले, और कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन जो सफर करते हैं वो जानते हैं, ज्यादा सामान के साथ सफर करना बहुत मुश्किल है। उस वक्त दिल करता है कभी कोई ऐसी एयरलाइन होती जो कहती बस हैंड कैरी लेके जाओगे, तो जिनके पास पैसा बहुत है ना उनके बारे में कभी रश्क ना करें, बहुत मुश्किल में लोग। अक्सर लोगों के बड़े बड़े घरों से गुजरते हैं, अच्छे भी लगते हैं, लेकिन मैं अक्सर उन पर रहम खाती हूँ, कैसे संभालते होंगे, कैसे इनको फिक्र होगी, हाय अब ये बिजली का बिल, फिर मेंटेनेंस। तो याद रखिए, अगर अल्लाह ने आपको थोड़ा दिया है ना, खुश हो, होते ला ये मुत, इतना खाना कि मरे ना, 2 वक्की रोटी, गर्मी सर्दी में तन ढांपने के लिए 3 जोड़े, एक आज पहन लिए, दूसरा कल नहा धो के बदल के पहनेंगे, और तीसरा पैकअप, 3 आम जोड़े बहुत होते हैं सफर में, मैंने इसको बीसियों का सैकड़ों दफा देखा है, 3 ही बहुत होते हैं, एक धोने में गया हुआ है, एक पहना है, और एक उतारा है, बस एक आधा जोड़ा कोई अच्छा पहनने चाहिए, अच्छे कपड़े को मना नहीं करता, शादी ब्याह मिलने में किसी के घर जाते हैं बिल्कुल अच्छे कपड़े पहन के जाने चाहिए, जो सूट है वो पहने ही, अच्छा पहने, संभालना क्या। एक आम जूता जिसमें आप आराम से चल सके, और कोई एक जूता ऐसा रख लीजिए जो अच्छे कपड़ों में पहन सके, काफी। आप देखेंगे आपकी जिंदगी खूबसूरत होगी। इस वक्त आज हमारी कितनी बहनें जो आप यहाँ आई हैं, आसानी से नहीं आई होंगी, मुझे पता है मुश्किल होगी, खाने का वक्त है, मासियों से काम लेना है, अभी यहाँ जाना है, बाजार जाना है, शाम को घर में दावत है, हाय वो शादी आने वाली, शादी आने वाली तो अल्लाह रहम करे हमारे लिए, अब एक आजमाइश आ गई। कई कई महीने हम शॉपिंग करते हैं, तो अल्लाह से नबी सल्लम की एक दुआ थी कि अल्लाह मुझे उतना रिस्क दे जिसमें मैं किफ़ायत कर जाऊँ। आपके पास फरिश्ते ने आकर सवाल रखा था, अल्लाह के नज़दीक भी अगर आप चाहें तो इस सफ़ा पहाड़ को सोने का बना दिया जाए, आपका घर सोने और चांदी का हो। सूरह ज़ुख़रुफ़ में अल्लाह कहते हैं कि मुझे अगर ईमान वालों की दिल आज़ारी का अंदेशा ना हो तो मैं कुफ़ार के घर सोने के और उनकी सीढ़ियाँ चांदी की बना दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, और भी ईमान मुश्किल हो जाए। तो सारी बात का खुलासा, कमाए नन्ज़लनाहु मिनस समाए फख्तलत बिही नबातुल अर्दी, जब बारिश हुई तो उस बारिश के नतीजे में क्या हुआ, इस दुनिया की मिसाल कैसी है, जैसे आसमान से हमने पानी बरसाया तो ज़मीन की पैदावार जिसे आदमी और जानवर सब खाते हैं खूब घनी हो गई, यानी बारिश के बाद आपको पता है ना सब्जा आता है, उसी का तस्करा है। फख्तलत बिही नबातुल अर्दी मिम्मा याकुलुन नास वल अनाम, सब्जा हुआ, जानवरों ने खाया, इंसानों ने खाया, अब क्या हुआ, हर तरफ हरियाली हो गई। फिर हत्ता इजा खदतिल अर्दु ज़ुख़रुफ़ाहा, यहाँ तक कि जब जमीन ने खूब निखार किया, सज गई, डेकोरेट हो गई, खूब घनी हो गई, वो पुरबहार थी और साथ ही साथ वज़ैनत और मुज़ैन हो गई, वज़न्नाहलुहा अन्नहुम क़ादिरूना अलैहा, और उसके मालिक ये समझ गए कि वो तो इसके ऊपर कादिर है। अब इतने को ज़रा सा समझिए, एक बच्चा पैदा होता है, मासूम लगता है ना, खूबसूरत, बच्चों जैसे ही बन जाए हम तो बख्शे जाएंगे, बड़ा प्यारा होता है। फिर ऐसा ऐसा वो बच्चा बड़ा होता है, माँ बाप देखकर खुश होते हैं, उसकी किलकारियाँ, उसकी बातें, फिर उसको स्कूल में डाल देते हैं, फिर वो पढ़ाकू हो जाता है, पढ़ने लग जाता है। फिर जब वो जवान होता है, बहू बनने के काबिल, अब वो कहीं जाकर काम करेगा, माँ भी खुश, बाप भी खुश, और बड़ी ही मेहनत से पाला। आप कहें कि माँ बाप ने पेट काट के पाला, इनको पढ़ा ले, जब पढ़ जाएंगे, अफसर लग जाएंगे, शहर में चले जाएंगे, बड़ा पैसा आएगा, अचानक क्या होता है, अल्लाह हुक्म अता अमरुना लैलन औ नहारन, आ जाता है हमारा हुक्म या रात को या दिन को, और फजाउना हसीदन, फिर हम उसको कटी हुई फसल की तरह छोड़ देते हैं, कालम तगन बिल अम्स, गोया कि कल तक तो वो बसता ही नहीं था। कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयात लिक़ौमिन यतफ़क्करून, अब एक पूरे गो में इकट्ठा आपको इस आयत का तर्जुमा सुनाती हूँ, आप तसव्वुर में सोचिए इसमें आपके लिए क्या है। फरमाया, दुनिया की ये जिंदगी जिसके नशे में मस्त होकर तुम हमारी निशानियों से गफलत बरत रहे हो, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से हमने पानी बरसाया तो ज़मीन की पैदावार जिसे आदमी और जानवर सब खाते हैं खूब घनी हो गई, फिरैन उस वक्त जबकि ज़मीन अपनी बहार पर थी और खेतियां बनी संवरी खड़ी थी, और इनके मालिक ये समझ रहे थे कि अब हम इनसे फ़ायदा उठाने पर कादिर हैं, यकायक रात को या दिन को हमारा हुक्म आ गया और हमने इसे ऐसा गारत करके रख दिया कि गोया कल वहाँ कुछ था ही नहीं। इस तरह हम खोल खोल कर निशानियां बयान करते हैं इन लोगों के लिए जो सोचने समझने वाले हैं। क्या पता चला, अल्लाह ताला ने इस आयत में हमें एक सबक दिया, और वो कह के दुनिया की किसी चीज़ का मान ना करिए। मैं आप सबको दुआ दूंगी, जो माएँ बैठी हैं, नानियाँ, दादियाँ, अल्लाह आपके बच्चों को लंबी उम्र दे, अल्लाह किसी माँ को अपने बच्चे का गम ना दिखाए, किसी नानी को अपने नवासे का, दादी को अपने पोते पोतियों का गम ना दिखाए। लेकिन कभी आपने सुना एन चढ़ती जवानी और बच्चा बीमार हो गया, दुनिया से चला गया। कुछ साल पहले जब एटलांटा में थी तो एक सिस्टर नर्स में थी, तो बड़ी गुमसुम थी, खामोश, चुप। साथियों ने मुझे बाद में बताया कि ये डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि इनकी 19 साल की बेटी थी, वो फौत हो गई है। खैर, बाद में मुलाकात हुई, हम उनके घर भी गए। बच्ची नॉर्मल जैसी बच्चियां होती हैं, बल्कि ग्रोसरी खुद लेकर आई। एकदम उसके पाँव में ना, पाँव के ऊपर जो टांग होती है, नस होती है, खिंच पड़ी। इग्नोर किया, लेकिन थोड़ा सा गुजरा तो दर्द बढ़ गई। उसने सोचा कि इसने ऊंची हील का जूता पहना है और इसकी वजह से पाँव में कुछ दर्द है। डॉक्टर पे ले गए, डॉक्टर्स को कोई शक हुआ। उन्होंने कहा इसके टेस्ट होंगे, उनको ब्लड में कोई क्लॉट दिखा और कुछ दिन के बाद पता चला कि उसको ब्लड कैंसर है। और शायद कुछ हफ्ते या मे भी एक आधे महीने के बीमारी के सफ़र से वो बच्ची चली गई। एक ही बेटी थी और एक शायद बेटा। हम उनके जब घर गए ना, तो वो माँ हमें उनकी बातें भी सुनाए, उसके कमरे में ले गई। आखिरी कपड़े पे जब वो पहन के उतार के गई थी, माँ ने वो भी नहीं उठाए हुए। उसके कमरे की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देती माँ, नहीं देनी। ये से मुझे उसकी याद आती है। अब आप सोचिए, 19 साल की बेटी चली गई और 35-40 साल की माँ मौजूद है। मुमकिन है ना? आपने कभी किसी जवान बच्चे को जाता देखा? दुआ तो यही होती है कि बूढ़े जाएं, बच्चे उनकी खिदमत करें, लेकिन कभी कभी उलट भी होता है। तो कभी किसी चीज़ का मान ना करें। ये दुनिया जो मिली है ना, किसी वक्त छिन सकती है। और अगर आपको कम मिली, आपका ख्याल है, हालांकि कम नहीं मिली, तो गिनना शुरू कर दें। आप सुबह से उठकर शाम सोने तक गिने हैं जरा क्या क्या नेमत है। आप तसव्वुर में सोच लें, फिर मैं बोलती हूँ। उठते सबसे पहली नेमत आपको क्या मिलती है? सोच लें, सोच लें। जिंदगी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा मातना। मैंने ही कितने शुरू, क्या आप और मैं नींद में सो नहीं सकते थे? कितने होते हैं रात को सोते हैं अपने बिस्तर में और आंख खुलेगी कब्र में। हमारी एक साथी है, तो उनके शौहर नींद में चले गए, अपना घर बनाया बहुत बड़ा शौक से, अरमानों से, और कुछ में भी एक आध महीने के बाद बिस्तर पे सोए और सुबह उठे नहीं। तो मुमकिन है ना? फिर क्या, इसका गम क्या करना और इसका हिरक क्या करना? शुक्र कीजिए, क़यामत के दिन जिनको कम मिला है वो 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। और इसको मैं अक्सर एक मिसाल देती हूँ, शायद आपको किसी को भी तजुर्बा ना हुआ हो, कहीं ना कहीं जाके होगा। सफ़र के दौरान जिसके पास सामान थोड़ा होता है ना, उसका जल्दी से चेकआउट हो जाता है, बोर्डिंग पास जल्दी से मिल जाता है, पूरा पूरा वजन है, पेपर भी ठीक है, वीज़ा भी है, पासपोर्ट भी एक्सपायर्ड नहीं। लेकिन कभी एयरपोर्ट पे आपको ऐसे मंजर ज़रूर दिखते हैं, बहस हो रही, जिरह हो रही, सामान निकाल रहे, उठा रहे, तोल रहे, ज़्यादा है, किसी के पेपर में एक मसला है, नहीं जाने देते। कौन सा बंदा अच्छा है, जो बड़ा खाली हाथ हल्का हल्का जा रहा है, वो या दूसरा? तो इस दुनिया का गम ना कीजिए,